प्राइम इंस्टीट्यूट का ये एक प्रोजेक्ट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, और ये वीडियो सीरीज़ उसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखती है। और ये प्राइम इंस्टीट्यूट का एक अहम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट निजकारी के अमल में तेज़ी लाना चाहता है, जबकि हम जानते हैं कि 20 30 शायद 40 साल गुजर चुके हैं और ये प्रोजेक्ट जो है हुकूमत की तरफ से एक तरह से बहुत से कमीशन बने, कमेटियां बनी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन जो बड़ी बड़ी एसओईज़ हैं उनके नहीं हो सकी। और इस वक्त भी तकरीबन 83 के करीब कमर्शियल एसओईज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं और वो उन्हें प्राइवेटाइज़ करना भी चाह रही हैं, लेकिन फिर भी वो प्राइवेटाइज़ नहीं हो पाती हैं। तो इस प्राइवेटाइजेशन या निजकारी के अमल में रुकावटें क्या क्या हाल हैं, ये प्रोजेक्ट असल में उन रुकावटों को आइडेंटिफाई करता है और फिर उनका हल बताने की कोशिश करता है कि कैसे उन रुकावटों को अबूर करके प्राइवेटाइजेशन को अमल को तेज़ रफ्तार किया जा सके। प्राइवेटाइजेशन के बारे में इन वीडियो पॉडकास्ट का मकसद एक ऐसा रिसोर्स तश्कील देना है जहाँ निजकारी के अमल के हर पहलू पर हर तरह की आरा यकजा हो सकें। निजकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, दोनों सूरतों में इसके नुकसान क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। यहाँ हम बग़ैर किसी इम्तियाज़ और बग़ैर किसी फेवर या डिसफेवर के खुलकर बात करना चाहते हैं, और बात करने के लिए हमने मुख्तलिफ़ लोगों को बुलाया है। मुख्तलिफ़ लोगों को हम बुलाते भी हैं इसमें, जिनमें हर तबके की फ़िक्र के लोग शामिल हैं। इनमें निजकारी के अमल में शामिल लोग भी हैं और निजकारी के नाकिद भी हैं, निजकारी के मामला से जो बहुत अच्छी शनासाई रखते हैं वो लोग भी हैं इसमें, और निजकारी से मुतालिक जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनकी वाकफियत रखने वाले लोग भी शामिल हैं। हमारे साथ आज अनिल सलमान मौजूद हैं। अनिल सलमान इस्लामाबाद रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे आप शॉर्ट कह लें इपरी, में जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसके सरबराह हैं। आप एक डायनमिक एकेडमिशियन, ट्रेनर और रिसर्चर हैं। अनिल सलमान इकोनॉमिक्स, ब्लू इकोनॉमी, एकोफेमिनिज्म, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज की बैकग्राउंड के हामिल हैं। आपके मुतअद्दिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के साथ एफिलिएटेड हैं, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। प्रोफेसर अनिल सलमान का काम मुतअद्दिद बैन अल-अक़वामी जर्नल्स और किताबों में शाया हो चुका है। उनकी अहम किताब है कोस्टल एकोसिस्टम एंड पीपल इन पेरिल, द स्टोरी ऑफ केटी बंदर इन पाकिस्तान। ये किताब तहकीक और जो एक तरह से ग्रास रूट एप्लीकेशन होती है उस तहकीक की, उसके दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज करने की, पूरा करने की कोशिश भी करती है। अनिल सलमान विफाकी हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर और एकेडेमिया, इन सब के साथ काम कर चुके हैं। तो आज हम अनिल सलमान इनके साथ प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के मुख्तलिफ आस्पेक्ट और प्राइवेटाइजेशन से मुतालिक जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं या वो खुद भी जो बातें कहना चाहते हैं निजकारी के बारे में, उन सब पे बात करेंगे उनके साथ। तो अनिल सलमान साहब, ये जो पाकिस्तान में तकरीबन आप कह लें कि 77 का जो माशाल्लाह लगा जनरल ज़िया का, उसके बाद यहाँ पे पहले तो डी नेशनलाइजेशन का अमल शुरू हुआ कि जो एंटिटीज़ या थी हुकूमत ने जो नेशनलाइज कर ली हुई थी भुट्टो के दौर में, तो उनको डी नेशनलाइज किया गया, डी नेशनलाइज करने का अमल शुरू हुआ। लेकिन उसके साथ ही एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी शुरू हुई और फिर डी रेगुलेशन भी शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइजेशन भी शुरू हुई। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है उसकी। आप इसके बारे में जो डी नेशनलाइजेशन हुई या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई, डी रेगुलेशन हुई, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके ख्याल क्या हैं और फिर वो किस तरह आगे चलकर फिर एक प्राइवेटाइजेशन का अमल जो शुरू हुआ, अगरचे वो हो नहीं सका। एक बड़ी अहम बात है कि जो जो एंटिटीज़ प्राइवेट एंटिटीज़ थी और जिन्हें गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर लिया था, वो तो थी ही प्राइवेट, चलिए उन्हें किसी हद तक डी नेशनलाइज करना आसान था, लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन थी और एक तरह से जो एंटिटीज़ बनी ही गवर्नमेंट ने बनाई थी, गवर्नमेंट ने चलाई थी, वो अलहदा बात है कि वो फ़ायदे में रहीं या नुकसान में रहीं, लेकिन फिर उन्हें भी प्राइवेटाइज करने का अमल शुरू हुआ। तो इसके बारे में जनरली आपकी राय, और फिर हम आगे आके मखसूस इशूज़ जो हैं उन पर भी बात करेंगे। जी
शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेकिन जब हम प्राइवेटाइजेशन का फिनोमेना देखते हैं, आपको दो लेंस देखनी है। एक आपका है डेवलप्ड कंट्रीज का पर्सपेक्टिव और एक आपका डेवलपिंग कंट्रीज का पर्सपेक्टिव। पाकिस्तान के अंदर कोई चार वेव्स आई प्राइवेटाइजेशन की, लेकिन जैसे भी आपने फरमाया 60s की, 70s की, फिर 80s में जब आपकी जमहूरियत का दौर स्टार्ट होता है तब हम फॉर्मली इसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, इवन ग्लोबली अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ का पर्सपेक्टिव देखें वहाँ पे भी आपकी प्राइवेटाइजेशन चल रही थी। लेकिन सवाल जो बड़ा अहम है वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन हम करते क्यों हैं, और प्राइवेटाइजेशन का अमल जो हमने पाकिस्तान के अंदर एक्सपीरियंस किया वो कैसा था। SOEs, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, जब ये परफॉर्म कर रही हैं और जब ये प्रॉफिटेबिलिटी में जा रही हैं और इनसे कोई नुकसान नहीं बल्कि अवाम को फ़ायदा हो रहा है, तब मेरे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन करना कोई इट्स नॉट अ गुड आइडिया।
जी जी।
लेकिन जैसे जैसे आपको लगता है कि मसाइल पैदा हो रहे हैं, लोगों की हायरिंग ज़्यादा हो रही है, और अब वही जो SOE है जो कि लोगों के फ़ायदे के लिए बनी थी अब एक वाइट एलिफेंट बन गई है, जहाँ पे सिर्फ पैसे जा रहे हैं लेकिन वो पैसे जेनरेट नहीं कर रहे, वहाँ पे मुफक्रीन और इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी आपको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें एक प्रस्पेक्टिव जो नज़र आता है कि जब हम प्राइवेटाइजेशन यानी मार्केट वर्सेस जब हम स्टेट को देखते हैं तो हमें लगता है शायद मार्केट के अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें समटाइम्स ये भी किससे मौजूद हैं, वी हैव दीज केस स्टडीज़ के जहाँ पे आपने कुछ ऐसी एंटिटीज़, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज किया है, उसने फ़ायदा देने की बजाय नुकसान भी किया। पाकिस्तान के प्रस्पेक्टिव में भी आप ये आई विल शेयर दैट विद यू। सो पाकिस्तान का बड़ा मिक्स्ड रिएक्शन रहा है अगर आप बाकी साउथ एशियन या डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ भी देखें कि कुछ अदारे अच्छे परफॉर्म कर गए और कुछ अदारे जहाँ पर उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। अब ज़्यादातर जो हमें लगता है कि प्राइवेटाइजेशन के जो मसाइल आए हैं वो बेसिकली यही हैं कि जो जिस तरीके से हमारी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस चल रही थी और जिस तरीके से उनको वो फ़ायदा देना चाहिए था वो नहीं दे रही थी और वो बल्कि गवर्नमेंट पे बर्डन बन गई। अब एक जो सबसे बड़ा ब्लो जो प्राइवेट सेक्टर को मिलता है वो है 1970s का टाइम, जबकि आपकी मार्केट जब ग्रो कर रही है आपने उस टाइम पे एक ऐसा एक्शन किया जहाँ पे आपने कहा कि हम तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो इंस्टीट्यूशंस इनको लगते थे उनको आपने नेशनलाइज कर दिया। अब प्राइवेट सेक्टर का जो बेसिक मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी। अब अगर मैं आपके प्रॉफिट के ऊपर कैप लगा दूं तो वो जो इंसेंटिव होता है कि मैं मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मैं मुल्क के अंदर काम लेके आना चाहता हूं, मैं मुल्क के अंदर बेरोजगारी ख़त्म करूंगा अपने इस अदारे के साथ, वो वाले आपके ऑब्जेक्टिव्स फिर अचीव नहीं होते। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी यही हुआ कि 70s का जो टाइम है जब हम नेशनलाइजेशन करते हैं, मे बी शायद अवाम के लिए अच्छा था, अवाम को वो सस्ती प्राइसेस में चीज़ें मिल रही थी, लेकिन फ्रॉम द परस्पेक्टिव कि क्या आपकी मार्केट मैच्योर हो रही थी, क्या आपकी मार्केट के अंदर एफिशिएंसी आ रही थी, क्या आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक कंपेटिटिव एबिलिटी आ रही थी, वो आपकी सारी ख़त्म हो गई। अब वो जो मॉडल था वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड मॉडल हो गया, वो ज़्यादा मॉडल सब्सिडीज पे चल रहा था। एंड अल्टीमेटली जब आपने 80s के अंदर जब आपका डेमोक्रेटिक एरा आता है तो इवन ग्लोबली भी डेवलप्ड कंट्रीज के भी अंदर आपकी प्राइवेटाइजेशन की वेव आई और पाकिस्तान भी के भी अंदर हमने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू
किया। जिस तरह सोशलिस्ट वेव थी, नेशनलाइजेशन की वेव थी, उसी तरह फिर नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वेव।
सो द क्वेश्चन कम्स के क्या हमें उस वक्त प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए थी, क्या प्राइवेटाइजेशन का एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान का ठीक रहा या नहीं रहा, दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन। और इस पर बहुत सारे जरीदे भी लिखे गए, बहुत सारे आर्टिकल्स, रिसर्च भी हुई पाकिस्तान के अंदर, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि इट्स अ मिक्स्ड वो जिसे कहते हैं रिजल्ट आता है कि कुछ कहते हैं जी इट हैज बीन सक्सेसफुल और कुछ कहते हैं इट हैज बीन अनसक्सेसफुल. लेकिन सबसे बड़ा जो वो जैसे कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट आया जो आज हम 2024 तक भी देखते हैं और जितने भी ये मुआशी मुकालमे होते हैं उसके अंदर हम ये लेके आते हैं जी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है मुल्क के अंदर वो बड़ी कम है. वो हार्डली है 13% टू द जीडीपी है, 13% बहुत कम है. इसको आपने इंक्रीज करना है जो नॉर्मल साउथ एशिया के अंदर वो आपकी 35-40% आपकी इन्वेस्टमेंट है. अब क्यों नहीं होती आपकी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक तो वो जो 70s वाला जो अभी तक प्राइवेट सेक्टर को वो जो एक एक्सपीरियंस हुआ कि कभी भी नेशनलाइजेशन हो सकती है, दैट फियर इज देयर. उसके बाद फिर जब अदारे इतने लंबे अरसे तक गवर्नमेंट के अंदर रहें और उसके बाद उनकी जो आदत होती है वो कंपेटिटिव नहीं रहती, उसके बाद दे डोंट ट्राई कि हम कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अपने वो जैसे कहते हैं फंडिंग लेके आए, हम कोई
इनोवेशन
लेके आए, इनोवेशन लेके आए और वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं. सो पाकिस्तान के अंदर अलमिया यही रहा है दैट अगर आप इस इकोनॉमिक फिनोमेना को समझें तो प्राइवेटाइजेशन इज गुड वेयर यू आर गिविंग मार्केट दैट काइंड ऑफ जिसे कहते हैं स्पेस जी वो आराम से अपना काम करे, जितना आपने प्रॉफिट कमाना है कमाए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट गॉट दैट काइंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर. हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बड़ा शाये है, रेंट सीकिंग का एक वो जिसे कहते हैं बिहेवियर है, इनोवेशन हम नहीं करना चाहते और ज्यादातर हम प्रोटेक्टेड ही रहना चाहते हैं.
वही प्रोटेक्टेड बिहेवियर जो बन गया है वो
एग्जैक्टली
जी. अच्छा, इसमें आपने जो एक बात की थी मुझे याद आता है कि और बल्कि जब नेशनलाइजेशन हो रही थी और उस वक़्त एक स्लोगन बनाया था जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, स्लोगन ये होता था नेशनलाइजेशन फॉर द पीपल
जी.
और ये पीपल्स पार्टी सीधी सी बात है की पीपल्स पार्टी ने की थी, प्रो सोशलिज्म थी, सोशलिज्म हमारा जो है हमारी मईशत है, उनका एक नारा भी था इस तरह का. अच्छा वो लेकिन वही जब आपने जैसा आपने बात की कि 88 में जब फिर सिविलियन गवर्नमेंट्स आई हैं, मार्शल्ला का दौर ख़त्म हुआ, जनरल ज़िया का जो गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हुई, तो उसके बाद जो मुझे याद है पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर की जो गवर्नमेंट बनी थी, अच्छा प्राइवेटाइजेशन का अमल क्योंकि शुरू हो चुका था, नवाज शरीफ ने शुरू कर दिया था
जी.
तो वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बिल्कुल बगैर सोचे समझे जैसे अब चीज़ों को उठा लेते हैं ना उसी तरह चलते रहते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे सिर्फ नाम बदल गया कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के बजाय बेनज़ीर की गवर्नमेंट आ गई, अच्छा प्राइवेटाइजेशन का अमल वैसे ही चलता रहा. और मुझे याद है बेनज़ीर के दौर में भी अखबार के फुल पेज पर या हाफ पेज पर इश्तहार छपता था और मुझे बड़ी उस पर हंसी आती थी और मुझे एक जो हमारी पॉलिटिक्स की आर्नी है वो भी नज़र आती थी कि अच्छा अब स्लोगन वो जो नेशनलाइजेशन फॉर द पीपल था वो बन गया प्राइवेटाइजेशन फॉर द पीपल. भाई आपकी पोजीशन क्या है, पॉलिटिकल पोजीशन, तो मैं थोड़ा सा इसके साथ भी जोड़ना चाहूँगा. और आपने कहा इंसेंटिव की बात भी, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट का इंसेंटिव है एक, लेकिन पब्लिक सेक्टर में फिर क्या इंसेंटिव रह जाता है. हम जब ये नुक्ता नज़र बनाते हैं कि भाई पब्लिक सेक्टर में भी चीज़ें चल सकती हैं, एफिशिएंसी आ सकती है, जैसा आपने कहा कि अगर पब्लिक सेक्टर में जो जो भी एंटिटीज़ हैं, जो कारोबारी इदारे हैं, अगर वो प्रॉफिट में जा रहे हैं तो उन्हें प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए. लेकिन अभी ये सवाल नहीं मेरा, मैं थोड़ा सा हम चलें उस पर आ जाते हैं क्योंकि वो बात हो गई है अभी कि नेशनलाइजेशन फॉर द पीपल, प्राइवेटाइजेशन फॉर द पीपल. क्या पाकिस्तान की सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बाकी भी जो जमातें हैं सब, क्या उनका कोई पॉलिटिकल पोजीशन, क्लियर पॉलिटिकल पोजीशन है भी या नहीं है, या वो सिर्फ वक्त के साथ चल रहे होते हैं?
आपने जिस सवाल के अंदर खुद ही जवाब दे दिया कि हम वक्त के साथ ही हम चल रहे होते हैं. और अभी एक हमारी वो जैसे कहते हैं ना सियासी लुगत के अंदर एक और टर्मिनोलॉजी है यू टर्न्स, तो वो बड़े मशहूर हैं
जी जी.
तो जी एक टाइम पे आप एक बात कहते हैं और जैसे ही हालात बदलते हैं तो आप फिर दूसरी बात कहते हैं. कभी नेशनलाइजेशन इज़ फॉर द पीपल, कभी प्राइवेटाइजेशन इज़ फॉर द पीपल. लेकिन वो आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि क्या वॉज इट अ वेल थॉट आइडिया, मेरे नहीं ख्याल में इट वॉज बेसिकली अ फैड. जी अगर अमेरिका जैसा
कौन सा आइडिया,
इट इज बेसिकली अ फैड फैशन है,
नेशनल
प्राइवेटाइजेशन की.
अच्छा प्राइवेटाइजेशन
की, इट वाज बेसिकली अ फैड कि जी अगर बाकी ममालिक में अगर आप एसओईज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और आपने उनको प्रॉफिटेबल बनाया है और आप ये कहते हैं जी अगर आप کیپٹلزم یا اگر آپ مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ پروفٹ دیتے ہیں، زیادہ پراسپیرٹی دیتے ہیں، تو وائی ناٹ گورنمنٹ کو اپنا فٹ پرنٹ کم کرنا چاہیے.
جی جی.
ابھی بھی اگر میں آج کی بات کرتا ہوں تو پاکستان کے اندر تقریباً کوئی 30-35% آف دا جی ڈی پی آپ کا یہ گورنمنٹ اپروولز میں ہی جا رہا ہوتا ہے. اٹ از مور آف ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کیا بن چکا ہے، پرمیشنستان بن چکا ہے کہ ہر چیز کی آپ کو پرمیشن چاہیے ہوتی ہے. ایوری ویئر یو نیڈ این او سی.
کہتے تھے لائسنس راج تو پرمٹ راج ہے.
پرمٹ راج. سو جتنی زیادہ آپ کی گورنمنٹ کی ایک کاسٹ بڑھی ہے، جتنا زیادہ گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی میجر انڈسٹریز ساری گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں تو مارکیٹ کے اندر اتنی پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. تو آپ وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی اگر تھوڑی سی ہمت بھی کرتا ہے تو یہ اتنے بڑے بڑے جائنٹس ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو پرائیویٹ سیکٹر کا مارکیٹ میں آنے کا اور ان ایس او ایز کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا وہ جو ایون وہ جو اگر یہ ٹرائی بھی کرتے ہیں وہ کر نہیں سکتے کیونکہ گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے. نمبر دو کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یہ پاپولسٹ موو زیادہ کرتی ہیں. یہ بھی ہم نے ریسنٹ بھی دیکھا کہ اور اس کا جو جو ہوتا ہے نا وکٹم وہ عوام بنتی ہے. اور ہمیشہ سے آپ دیکھ لیں چاہے وہ نیشنلائزیشن ہو چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو, it's the people who bear the burden of this thing. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی واز اٹ اے ویل تھاٹ آئیڈیا, میرے نہیں خیال میں ہاں ہمارے پاس ایک مکمل ایک انسٹیٹیوشن ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن, انہوں نے اپنی ایک پرائیویٹائزیشن پالیسی بنائی ہوئی ہے. اور اگر آپ ایکسپیرینس دیکھیں کہ وہ جو ایس او ایز جو میں نے شروع میں بتایا کہ جو پہلے بھی پروفٹ کما رہی تھیں, یعنی جب وہ پروفٹ کما رہی ہیں آپ ان کو کیوں پرائیویٹائز کر رہے ہیں. پھر نمبر دو جو اس میں ایشو آتا ہے کہ آپ ان کی کیا ویلیو لگاتے ہیں.
ٹھیک.
فور کلوجرز کا جو ایشو ہے کہ میں نے ایک یونٹ ہے اس کی ویلیو جو مارکیٹ ویلیو وہ 100 روپیہ ہے, لیکن میں اس کی جو اسیسمنٹ کرتا ہوں میں 50 روپے میں کرتا ہوں. میں کسی اپنے ہی وہ جسے کہتے ہیں کلیگ کو یا میں کسی اپنے ہی جاننے والے کو 50 روپے میں بیچ دیتا ہوں اور وہ بھی کلیگ آگے سے بڑا کمال کرتا ہے, وہ 50 کی بجائے اب اس نے 50 کی خریدی اور وہ آگے 200 روپے میں بیچ.
لیکن اس کے ساتھ ہی جو بات میں کہنا چاہوں گا ایک کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ٹی این ٹی پروفٹ میں تھی, لیکن جب وہ اگر اس کو وقت یہی سوچا جاتا کہ ہم اسے پرائیویٹائز نہیں کرتے ہیں, لیکن یقیناً ٹی این ٹی کی مطلب پروفٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انفیشینٹ بھی تھی وہ.
جی
مطلب آپ کتنے پرسنٹ کہیں گے, مطلب میرے خیال 1000% انفیشینٹ تھی وہ, کیونکہ اگر 10 سال میں کسی کے پاس مطلب کنیکشن نہیں مل رہا فون کا, اس کیا مطلب اس میں ایشو تھا کہ کیوں ان کا انفراسٹرکچر جو بڑھایا نہیں جا سکتا تھا. اچھا ایک چیز جو مجھے جو چیز نظر آ رہی, جو بات آپ بھی کر رہے ہیں, چلیں میں اگر آپ کی بات سے اگری کروں کہ پرائیویٹ جیسے آپ اسٹیل مل ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں آپ. اچھا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیٹکس پاپولسٹ مووز ہیں, اچھا لانگ ٹرم تھنکنگ بالکل بھی نہیں ہے ان کی, ایڈ ہاک بیسس پہ پالیسیز بنا رہے ہیں. اچھا سیدھی سی بات ہے جب اس طرح کی پالیٹکس ہوگی اور اس طرح اسٹیٹ کو چلایا جائے گا, گورنمنٹ کو اس طرح چلایا جائے گا, تو پھر ہوگا کیا جو جیسے آپ نے ایجوکیشن کی مثال دی, میں اسے کہوں گا کہ گورنمنٹ نے بعد میں ایجوکیشن میں سے نکلی ہے, وہ پہلے ہوا یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر ایک طرح سے بڑھنا شروع ہو گیا, خود بخود ایکسپینڈ کرنا شروع. جب مطلب دیکھیں نا بھٹو کے دور میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی نیشنلائز ہو گئے, کیا ضرورت تھی کرنے کی, اچھی بھلی ایجوکیشن چل رہی تھی, کوالٹی ایجوکیشن, لیکن اس نے کیا کیا پوری ایجوکیشن کو وہ جو نیشنلائز ہوئے تھے وہ بھی اور جو گورنمنٹ کے پاس پہلے سے تھے وہ سب ایک بربادی کی طرف ایک زوال کی طرف جانا شروع ہو گئے, ایجوکیشن کی کوالٹی تقریباً ختم ہو گئی. اچھا ہوا کیا, لوگوں کو بھی یہ نظر آ رہا تھا لوگوں کو اور کچھ لوگوں کو اس میں جو تھوڑا سا انٹرپرینرشپ کی اسپرٹ رکھتے تھے ان کو اس میں ایک اپرچونیٹی نظر آئی, پرائیویٹ اسکول کھلنے شروع ہوئے, گلی گلی میں پرائیویٹ اسکول کھلنے شروع ہو گئے. اور یہ پریکٹیکلی ایسا ہوا ہے کہ جیسے جیسے پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھا ہے حکومت پیچھے ہٹتی ہے.
جی جی.
ایک ڈیفیٹنگ جو بیہیویئر تھا وہ اس کا بن گیا, اور یہ اس طرح سمجھے ہوا ایجوکیشن میں. میرے خیال میں ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرح سے جیسے فرض کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے, لیکن ایشو اس میں 2-3 ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اجازت دیں باقی لوگوں کو कि भाई स्टील मिल लगाए हैं, पहले है और भी स्टील मिल हैं, बहुत सी हैं, ताज स्टील मिल है और इस तरह के बहुत से लोग काम कर रहे हैं सारे, लेकिन बिल्कुल ओपन कर दें आप, बाहर के लिए भी ओपन कर दें, इंपोर्ट उसकी इंपोर्ट भी स्टील की ओपन कर दें, अब भी इंपोर्ट हो रहा है
जी।
अच्छा, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब उस सेक्टर की मार्केट ओपन हो जाएगी तो उसमें कंपटीशन पैदा होगा, फिर ठीक है, उस कंपटीशन में जिस तरह एजुकेशन में स्टेट डिफीट हो गई, उसी तरह उस कंपटीशन में अगर जो एसओई है, जो भी कंसर्न एसओई है, स्टेट ओन एंटरप्राइज है, अगर वो कम्पीट नहीं कर सकती तो वो डिफीट हो जाएगी, खुद ब खुद पीछे चली जाएगी। अच्छा, अदरवाइज अगर ये करना, जैसे आपने पहले भी कहा था कि प्राइवेटाइजेशन कुछ ऐसी हुई है कि जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, हमें बेनिफिट नज़र नहीं आया, जैसे के इलेक्ट्रिक की मिसाल हम ले सकते हैं उसमें ना, बिल्कुल, तो लेकिन उसमें हुआ वही कि एक गवर्नमेंट के पास मोनोपली है, आप किसी और को मोनोपली दे देते हैं, वही मोनोपली उठा के, तो वो तो बिहेवियर तो उसका चेंज नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा उसमें। हाँ, थोड़ी सी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक में इनोवेशन की गई है, कुछ चीज़ें की गई हैं, इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा कोई नोटिसेबल चीज़ें नहीं हैं। तो ये सवाल जो है कि प्राइवेटाइजेशन के साथ असल में तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मतलब इसके कई मेथड्स हो सकते हैं। अच्छा, फिर ये कि जैसा आपने शुरू में एक बात की थी कि हम हैबिचुअल हो जाते हैं, एक्सटर्म्ड हो जाते हैं, कुछ चीज़ों के आदि हो जाते हैं, जैसे प्रोटेक्टेड मतलब एंटरप्रेनर्स भी, मतलब कारोबारी लोग भी आदि हो गए गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के अब, लेकिन सीधी सी बात है कभी ना कभी तो उन्हें शॉक ट्रीटमेंट देना होगा,
बिल्कुल,
ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सके। जैसे मैं टेक्सटाइल जो लॉबी है, मैं तो उसे लॉबी कहता हूँ, बल्कि मैं उसे टेक्सटाइल बेबी कहता हूँ,
आप कार्ड उसका नाम
जी दे जी 70 साल हो गए हैं, हाँ जी 70 साल हो गए हैं और वो अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सके ना, उन्हें अब भी वो सब्सिडीज चाहिए हैं, उन्हें बिजली जो है वो समझे एक तरह से सब्सिडाइज रेट पर चाहिए, उन्हें गैस सब्सिडाइज रेट पर चाहिए है, तो भाई आप एक दफ़ा तो आपको शॉक ट्रीटमेंट देना होगा। अच्छा, इसी तरह लोगों की बात भी है, लोगों को हमने जिस चीज़ पे लगाया हुआ है, और अगर है उस तरह है नहीं प्रैक्टिकली कि ये जी चीज़ सर्व गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है तो शायद ये सस्ती है, शायद ये क्वालिटी है इसमें नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोगों ने देख लिया हुआ है, और कभी ना कभी तो यकीन प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ शॉक ट्रीटमेंट भी जुड़ा हुआ है।
आई एग्री कि जो आप जिस लेंस के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर आप ये देखें कि बहुत अच्छा हुआ प्राइवेट स्कूल्स आ गए, लेकिन मुझे याद पड़ता है जब मैंने अपना मास्टर्स किया तो वो मेरे ख्याल में मुबलग 4000 में मैंने किया अपना मास्टर्स, लेकिन आज का जब मैं ग्रेजुएट देखता हूँ उसको पे करना पड़ रहा है अराउंड कोई, मैं एक इंजीनियर अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बन रहा है उसको 20-25 लाख रुपया देना
जी,
तो 4000 इज लाइक अ जोक, और ये मैं कोई पुरानी बात नहीं, इतना बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इतनी मैं बात नहीं कह रहा कि जी कोई बहुत सदियों पहले मैंने मास्टर्स किया था, लेकिन वो जो एक बेनिफिट था कि जी एक गरीब का बच्चा भी देख सकता है कि जी वो 4000 के अंदर मास्टर्स, और मैं पूरे 2 साल की बात करूँ, 2001 साल और 4000 आई कांट इमेजिन, लेकिन आज एक ऑलमोस्ट एक एवरेज प्राइवेट स्कूल की जो मिनिमम है वो 15000 है, जो मैक्सिमम तक जा रहे हैं कई प्राइवेट स्कूल्स डॉलर्स भी चार्ज कर रहे हैं और लोग दे रहे हैं,
ठीक है,
वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म हो जाता है वहाँ से। नंबर दो कि जी आप 20 रुपये की पर्ची में इलाज करवा लेते हैं और वही इलाज अब 20 लाख में भी शाम को करवा रहे हैं, एक छोटा 10 मिनट का प्रोसीजर 1 लाख का पड़ता है फ्रॉम वेयर दैट लोगों के पास यानी पैसा है और लोग कर रहे हैं, और कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि जी पैसे नहीं है तो मैं इलाज नहीं करवाऊंगा, आप अच्छी सी जगह अच्छी जगह पर आएंगे, आप अपने पर्सनल एसेट्स को बेचेंगे, तो वो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जी प्राइवेटाइजेशन सोल्यूशन आ जाता है, वाई कांट वी रिपेयर और वाई कांट वी ब्रिंग चेंज इन द पब्लिक यूनिट्स एसओईज के अंदर क्यों नहीं करता है? लेट मी गो टू द सॉफ्टवेयर जो ये लोग कर रहे हैं, ठीक है
जी,
पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सिविल सर्विस, और इसमें भी हमारे बड़े मिक्स्ड हैं कि जी एक फॉरेस्ट्री का मास्टर्स करके वो किस तरीके से फॉरेन सर्विस कर लेता है, एक जनाब वेटनरी डॉक्टर है वो डीसी कैसे बन जाता है, वो भी एक मिथ है भाई, उनमें से सीएसए में जाते हैं, एसटीपी करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, और फिर इट इज़ द सेम थिंग कि जी एक प्रोफेसर को किस तरह मान जाता है वाइस चांसलर, उसकी भी ट्रेनिंग होती है तब वो बनता है। सो ये कहना है कि जी इन लोगों के पास कॉम्पिटेंसी नहीं है वो है। अब यही लोग क्योंकि दे आर रनिंग बिग पब्लिक डिस्ट्रिक्ट्स एंड एवरीथिंग, इनको कौन हायर करता है? डीएफआईडी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सारे, और ये वहां पे जाके प्राइवेट प्रोग्राम्स में कारनामे कर देते हैं. एंड दिस इज आवर ब्यूरोक्रेसी. इसका ये मतलब, मैं वो कह रहा था ना कि इनएफिशिएंसी कहां पे है? इज इट द स्ट्रक्चर? इज इट द पीपल? मुझे को 20 साल हो गए इनको पढ़ाते हुए, मुझे नहीं लगता कि दे आर वेरी इनकॉम्पिटेंट, लेकिन हम वो स्पेस नहीं देते. और अगर हम ये कहें कि क्या अगर आपने इन लोगों को हायर किया हुआ है, विच आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हमारे यहाँ पे कंपटीशन का एग्जाम होता है, इट इज लाइक क्रीम आपकी वहां पे जाती है, ट्रेनिंग कर दी, फिर क्यों नहीं ये अदारे चल रहे, क्यों नहीं ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आपको वो सर्विस डिलीवरी दे रहे जो कि एक प्राइवेट कंपनी आपको दे रही होती है? अब उसके अपने मसाइल हैं कि जी अगर आप कोई चेंज लेके आएंगे, आपको मैं 3 महीने बाद आपको ओएसडी लगा दूंगा, आप कहेंगे यार अभी मैंने करना ही नहीं. सो मेरे ख्याल में वो जो कंपटीशन जो हम कहते हैं ना, जो कि मिसिंग है, जहाँ पे फॉरेन कंपनीज आके पाकिस्तान स्टील को या पीआईए को चैलेंज करे. अब आप देखें, अगर आप पिछले कुछ 4-5 साल में देखें, इन द एयरलाइन इंडस्ट्री कंपटीशन आया है एंड पीपल डू नॉट प्रेफर टू ट्रैवल विद पीआईए. लोग कहते हैं यार एक तो फ्लाइट नहीं चलती है, नहीं वो आपकी वाली बात कि जैसे ही आप कंपटीशन लेके आएंगे, स्टेट अगर अपने आप को इंप्रूव नहीं करेगी, पीपल आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज, एंड दिस शुड बी द स्पिरिट. रादर देन अगर हम ये कहें कि नहीं जी इसको प्राइवेटाइज कर दो तो चीजें ठीक हो जाएंगी, इट मे नॉट. मेरे ख्याल में एक जो मिड वे है कि इन एसओईज को का कंपटीशन आप लेके आए फॉरेन कंपनीज के साथ, डोमेस्टिक कंपनीज के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी और खुद उनको हो जाएगी. नंबर दो, दैट इज द नेचुरल वे. प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब आप गलती करते हैं ना, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिसने आप टारगेट्स नहीं पूरे करेंगे, आई वुड से थैंक यू वेरी मच, आई डोंट नीड योर सर्विस. पब्लिक सेक्टर के अंदर आप जितना बड़ा लॉस करेंगे, मैं उतना ज्यादा आपको नवाजूंगा कि वंडरफुल यू हैव डन. हम अपने वो बिजनेस के निसाब में पढ़ते हैं मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या फर्क होता है. दोनों अपने गोल्स अचीव करते हैं, लेकिन मैनेजर हमेशा कॉस्ट को कम करता है, एडमिनिस्ट्रेटर कॉस्ट की फिक्र ही नहीं करता. एक ही कल्चर हमारा बन गया हमारी स्टेट का. सो ब्लेमिंग के जी स्टेट इनएफिशिएंट है, क्यों 10 साल लगते हैं एक कनेक्शन लाने में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब जैसे ही वो एंटिटी आपकी प्राइवेटाइज होती है तो एकदम आपका वो चेंज हो जाता है, वही 10 दिन में आपको मिल जाता है. और आज का कंपटीशन ये है, जब इतनी ज्यादा कंपनीज आ गई हैं कि वो आपको फ्री सिम देती हैं और कहते हैं जी आप घर तक जाए आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएंगी. सो कंपटीशन इज, हमें अपने गवर्नमेंट फुटप्रिंट को कम करना है. आप एक दुकान अगर आपने खोलनी, आई थिंक आपको 27 NOCs चाहिए.
बिल्कुल. अच्छा सॉरी, मैं आपकी पाइड की अभी रिसेंटली स्टडी एक आई है और उसमें उन्होंने जो सारा किया है कि तकरीबन 70% फुटप्रिंट है गवर्नमेंट का. अच्छा देखिए ना, इसीलिए हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन का इशू. सिर्फ प्राइवेटाइजेशन तो अभी फर्स्ट स्टेप होगा ना इस तरफ. अभी तो बहुत सारी, मतलब ये फुटप्रिंट जो है सिर्फ एक तरह से फिजिकल फुटप्रिंट नहीं है, बल्कि ये एक तरह से आप कह सकते हैं जो रेगुलेशंस हैं और जो रूल्स बने हुए हैं वो सारी चीज़ें भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी उसमें शामिल.
बिल्कुल है, बिल्कुल.
तो जी
लेकिन उसमें ये देखें ना कि अगर आप अबू धाबी बिजनेस सेंटर चले जाएं तो वहाँ पे सुबह वो एंटरप्रेन्योर जाता है, शाम तक निकलता है, तमाम उसके एनओसीज एवरीथिंग इज डन.
हाँ जी बिल्कुल.
इंडिया को अगर आप देख लें, दे हैव मेड अ पोर्टल और वो ऑनलाइन सारा कुछ आपको कर देती है. फॉरेन इन्वेस्टर आराम से पैसे इन्वेस्ट करता है. हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम ये तो बहुत बोस्ट करते हैं कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा कमाल का हो गया, लेकिन वी डोंट टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वी डोंट टॉक अबाउट द गवर्नमेंट फुटप्रिंट, वी डोंट टॉक अबाउट कि जी कितने हर्डल्स आएंगे. आपने हमारे पास अपना एक्सपीरियंस है ऐसी चीज का
जी,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहाँ पे गए, अभी तक कितने शुरू हुए, कितनी एफिशिएंसी, और वहां पे भी हम चाइना को कह रहे हैं जी आप करोगे तो हम करेंगे, वो कहते हैं जी दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी. सो वो जो इनएफिशिएंसीज हैं वो इस वजह से हैं बिकॉज आई डोंट मेक यू अकाउंटेबल. द डे आई स्टार्ट मेकिंग यू अकाउंटेबल एंड आई वुड से कि जी आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, आपका 2 साल का टेन्योर था, अगर आपने नहीं किया मैं आपकी पेंशन बंद कर दूंगा.
अकाउंटेबिलिटी
जी, लोगों के स्टेक्स नहीं है ना. मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टर हूँ, मेरा स्टेक है क्योंकि अगर मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, मैंने 5 लाख रुपया कमाना है वहां से, गवर्नमेंट के स्टेक्स नहीं है. गवर्नमेंट कहता है कि जी ठीक है, हमें अगर पैसे चाहिए एक प्रोजेक्ट के लिए, हम कहते हैं अच्छा स्टेट बैंक को आप कहें नोट छापें और काम हो जाएगा। वी डोंट अंडरस्टैंड कि भी उसके बाद इन्फ्लेशन आपकी कितनी हो जानी है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। अगर आप देखें कि हमने इतनी ज्यादा
मनी सप्लाई
इतनी प्रिंटिंग की है कि इन्फ्लेशन आपकी जनाब 28% जा रही है, लोग 22% पे भी बैंकों में पैसा नहीं रखना चाह रहे क्योंकि रियल वैल्यू ऑफ मनी आपकी खत्म होगी, रियल स्टेट में पैसे भी इन्वेस्ट करें। सो हमें अपना वो किबला दुरुस्त करने की जरूरत है कि आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, आपको वो जो प्रोटेक्शन दी हुई है यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे कार्टलाइजेशन है, आपने तो वो वर्ड यूज किया था ना कि दे आर मोर ऑफ द ब्लू आइड के जी, अगर आपने 100 बिलियन का टारगेट करना है तो वो एप्टमाई करेगी और जनाब वो टेक्सटाइल ही करेगी। नो, टेक्सटाइल इज नॉट गोइंग टू डू दैट क्योंकि टेक्सटाइल पहले इतनी हैवीली प्रोटेक्टेड है। आपको अपने वो जैसे कहते हैं ना कंपटीशन को ओपन करना पड़ेगा। सीमेंट इंडस्ट्री को देख लें, टेक्सटाइल को देख लें, ऑटोमोबाइल को देख लें। नाउ दीज आर द मिनी कार्टल्स जो कि गवर्नमेंट के आर्म ट्विस्ट कर रही होती है कि जी अगर आपने हमें ना सब्सिडी दी या हमें आपने प्रोटेक्ट ना किया, हम तो जनाब ये कर देंगे। अगेन बाय द एंड ऑफ द डे जो आपका पॉलिटिकल साइकिल है वो आपके इकोनॉमिक साइकिल के साथ सिंक नहीं करता। हमारा पॉलिटिकल साइकिल 5 साल का है
बड़ा ही,
और इकोनॉमिक साइकिल आप जनाब कहते हैं जो आपने मोजज़ात करने हैं वो आपने इन्हीं 5 साल में करने हैं क्योंकि आप उससे लंबा तो जा ही नहीं सकते। नंबर दो, हमारे यहाँ पे जो हम ग्रोथ की बात करते हैं कि जी अच्छा जी हमने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी, इट इज अ जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कोई आपकी एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स नहीं बढ़ते, हम सिर्फ वो फैंसी नंबर्स देख रहे होते हैं कि हमें अभी ये 700 मिलियन आईएमएफ से आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी अच्छी होगी, चलो फॉर द टाइमिंग वही मॉप अप्रोच आ गई। फिर से आए वो कहेंगे कि जी आप प्राइवेटाइज करें, हम 2-3 कागज हिलाएंगे, हम कहेंगे अच्छा जी 67 रह गई है इतना फायदा होगा। बट द इशू, द रियल इशू इज आई थिंक द क्वेश्चन शुड बी कि अगर मैं कहता हूँ लेट्स अज्यूम हम सारा कुछ प्राइवेटाइज कर देते हैं, क्या पाकिस्तान खुशहाल मुल्क बन जाएगा? क्या चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी?
नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं होंगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड करूँ, आपने जो बात की थी कि हमारे यहाँ जो वो एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स आते हैं कि कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, अच्छा मुझे बड़ी हैरानी होती, मैं देखता हूँ अमेरिका के फिगर्स ना हर महीने फिगर्स आते हैं और 100,000 या जो भी 200-500,000 बिल्कुल एग्जैक्ट वो बता रहे होते हैं इस महीने कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, हमारे यहाँ इस तरह नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा कि जो आपने बात की थी, आपने जब एमए किया और उसमें जो फीस, अच्छा जब मैंने एमए किया है मैं 85 में मेरा एमए कंप्लीट हुआ समझे, थीसिस वगैरह करके सारा, तो मुझे याद है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको ना दूसरी चीज़ों के साथ भी कंपेयर करूँगा। 5th ईयर की फीस 500 रुपीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी में, इसी तरह 6th ईयर की फीस 500 रुपीज़। अच्छा, लेकिन उस वक़्त 500 इकट्ठे करना भी मुश्किल था। मुझे याद है कि 5th ईयर की जमा करा दी और जो 6th ईयर की फ़ीस थी मैंने किसी से लोन लिया और फिर जमा कराई और फिर वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता जमा की। अच्छा, एक चीज़ देखनी हमें ये चाहिए कि उस वक़्त जो जैसे आपने 4,000 फ़ीस दी, मैंने 500 रुपीज़ दी, वो उस वक्त क्या वैल्यू थी उस 500 की उन 4,000 की?
बिल्कुल, अब
ठीक है ना। अच्छा, लेकिन उसमें यकीनन एक चीज़ हम कंपेयर कर सकते हैं, आज की मेरे ख्याल में जो चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें क्वालिटी डाउन हो चुकी है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट को देखूँ जाके तो मेरा तो दिल नहीं करता कि मैं वहाँ जाऊँ भी, अब जो सूरत बन चुकी है। अच्छा, लेकिन भारत इसमें हम एक तो ये हमें देखना चाहिए कि असल में जो मनी वैल्यू है वो कैसे मतलब बनी, या हमारा जो रुपी है वो डी वैल्यू कैसे हुआ?
ठीक,
लेकिन अब अगर फर्ज करें वो फीस अगर लाखों में है, मेरा बेटा पढ़ रहा है, हमने एक समझे सेमेस्टर की फीस 1.5 लाख जमा करवाई है फर्ज करें, तो क्या वो 1.5 लाख उस वक़्त के 500 जो मैंने पे किए, 4,000 जो आपने पे किए, उसमें कितना फ़र्क है?
उसमें
अगर लेकिन अगर हम क्वालिटी के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। जो बात आपने की थी ना, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम चीज़ है कि हमें ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर क्यों डिलीवर नहीं कर सकता, क्यों डिलीवर नहीं कर रहा। अच्छा, एक बात तो आपने कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके साथ मुझे जो चीज़ नज़र आती है ना वो है लैक ऑफ इंसेंटिव्स। कोई इंसेंटिव, एजुकेशन की मिसाल मैं दूंगा क्योंकि मैं उसमें रहा हूँ। अच्छा, मैंने देखा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छा मेरा टीचिंग पैशन है, था भी और अब भी है, अच्छा, और एक बड़े ही कॉन्शियस के साथ में अपना काम करता था, स्टूडेंट्स के साथ भी, तो वो स्टूडेंट्स भी उस चीज़ को देखते थे, फ़र्क को देखते थे। अच्छा, लेकिन मैं देखता था जनरली, हम सबको तो इस तरह नहीं बना सकते ना, सब देखते हैं माहौल क्या है, उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और उसमें क्या हो रहा होता था, सबको भी एक तनख्वाह मिल रही है, सबको हर साल इंक्रीमेंट लग जानी है, कोई इंसेंटिव नहीं है उसके अलावा। आप अगर अपनी क्लास के जो पीरियड है, अपना पूरा पीरियड पढ़ा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो आप तनख्वाह आपको उतनी ही मिल रही है। आप उससे ज़्यादा अगर अलहदा स्टूडेंट के साथ बैठ रहे हैं, उसकी आपको एक्स्ट्रा कोई नहीं मिल रही है। तो इंसेंटिव जो हैं वो मिसिंग हैं गवर्नमेंट में, और वही बात है। अच्छा, फिर एक इशू इसमें यह भी आ जाता है, ब्यूरोक्रेसी की आपने जो बात की, बड़ी हमारी चीज़ें बाज़ूकात में, मुझे खुद लगता है कि अनोमलीज कहाँ मौजूद हैं। हमें आपने कहा था कि जैसे टेन्योर प्रोटेक्टेड नहीं है ब्यूरोक्रेसी का, डॉक्टर इशरत हुसैन बड़े अरसे से कह रहे हैं, डॉक्टर नदीम उल हक बड़े अरसे से कह रहे हैं कि भाई उनका टेन्योर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होना चाहिए, मतलब आपने रखा है एक जगह जाके, तो एक चले 3 साल 4 साल 5 साल वो वहाँ पर रहें,
बिल्कुल।
अच्छा, लेकिन रख के भी देखा जा सकता है, वो एफिशेंसी नहीं आएगी, क्योंकि असल पूरी एनवायरनमेंट है। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी तो नहीं कहना चाहिए, स्टेट और गवर्नमेंट में एक तरह से मेरिट जो है उसे बिल्कुल किल कर दिया गया है, ख़त्म हो गई है बात।
Agreed.
अच्छा, ये वो चीज़ है जो सोसाइटी में डिसइंसेंटिव्स पैदा कर देती है लोगों में। सीधी सी बात है, आपको भी पता है लोग CSS क्यों कर रहे हैं, MBBS करके 5 साल 6 साल 7 साल लगा के इंतहाई मेहनत करके आते हैं और फिर वो CSS करने चले जाते हैं। इंजीनियर्स भी ये करते रहे, डॉक्टर्स अब भी कर रहे हैं ये। तो इशू जो है मेरे ख्याल में एक तरह से पूरा पॉलिटिकल, अब कह लें पॉलिटिको इकोनॉमिक सोशल एनवायरनमेंट जो हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स ने बना दी है। पॉलिटिक्स को मैं इसलिए इल्ज़ाम दूंगा क्योंकि यकीनन लोग मैंडेट पॉलिटिशियंस को देते हैं ना, गवर्नमेंट उन्होंने करनी होती है, गवर्नेंस उन्होंने करनी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम, मतलब अगर फ़र्ज़ करें ब्यूरोक्रेसी का प्रोटेक्टेड टेन्योर भी कर देते हैं, तो क्या ब्यूरोक्रेसी डिलीवर करेगी? क्या वो रेड टेपिज़्म ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे? क्या उनका जो एक तरह से एटीट्यूड है लोगों की, जहाँ पब्लिक डीलिंग मौजूद है उसमें उनका मतलब है कि पीपल फ्रेंडली सिटीजन फ्रेंडली हो जाएगा? मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं हम, बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें मौजूद। जी
देखिए, पहली बात कि आपका 500 रुपया, मेरा 4000 रुपया, आपके बेटे का 1.5 लाख रुपया,
ठीक है। हाँ जी,
विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं कि रुपए की कदर कम हुई है।
जी जी,
और वो हमने खुद की, हम खुद भी ये डीवैल्यूएशन करते रहे हैं और हम डेप्रिसिएशन भी करते रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजी होती है कि जी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, वो एक्सपोर्ट्स वगैरह कोई नहीं बढ़ी, लेकिन आपने अपने रुपए की कदर कम कर दी। और आज का जो पाकिस्तानी है वो स्ट्रगल ये कर रहा है कि जी आपके रुपए में वो ताकत ही नहीं। आज का जो 35,000 है वो बड़ी मुश्किल से हमने जो बिस में बनाया हुआ है कि जी जिसकी सैलरी है आई थिंक 35,000 to 40,000 है, वो गरीब है, जैसे ही वो 41 में चला जाता है वो अमीर हो जाता है।
जी देखिए ना, बिल्कुल।
अब द प्रॉब्लम इज के क्या वो 35,000 में अपना घर चला सकता है? द आंसर इज नो। तो इसलिए वो सुबह बैंकर है, शाम को कैप्टन बन जाता है और टैक्सियां चला रहा है, ठीक है। तो मेरे जमाने में ऐसा नहीं था, आपके जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं था, वाले साहब हमें वो दे रहे होते थे पैसे, या अगर बहुत कारनामा किया तो हम ट्यूशन कहीं पे कोई पढ़ा लिया करते थे।
अच्छा, मैं थोड़ा सा, मैंने जब रिजाइन किया यूनिवर्सिटी से तो 35 मतलब अराउंड इतनी की सैलरी थी, और मैं समझता था बड़ी मुनासिब सैलरी,
और थोड़ा गुजारा हो जाए,
थोड़ा सा मैं कनाट पसंद भी एक तरह से हूँ। तो ये चीजें यकीनन, अब तो 35 की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल
ठीक है। सो हमारी जो परचेजिंग पावर है विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी कम हुई है। दूसरा जो पाकिस्तान के अंदर एक आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट जो चेंज आया ना, हमारे यहाँ पे एकेडमिक इन्फ्लेशन आ गई। एकेडमिक इन्फ्लेशन,
जी
पहले आप देखें बीए पास बैंक में लग जाता था, अब पीएचडी वाले को भी नहीं वो रखते। सो हमें वो ये कहा जाता है कि अगर बीए पे नहीं नौकरी मिलती, एमए करो, एमए पे नहीं नौकरी, एमफिल करो, एमफिल नहीं करो तो पीएचडी करो, पीएचडी करो फिर शादी कर लो, ठीक है। सो दैट इज द राउट टू आवर ग्रोथ। نمبر دو ابھی آپ نے ایک بات کی تھی, ایک آپ نے یہ جو کمپیریزن کیا, آج کے جو روپے کی جو طاقت ہے بہت کم ہے, پہلے اب 500 روپے میں پورا پورا گھر چل جایا کرتا تھا اگر ہم اپنے گرینڈ پیرنٹس کو یا گرینڈ گرینڈ پیرنٹس کو دیکھو, اور وہ اس طریقے سے وائننگ نہیں کرتا تھا جس طرح آج ہم کرتے ہیں. ہم کماتے بھی زیادہ ہیں لیکن ہم روتے بھی اب زیادہ ہیں, اس وقت زیادہ قناعت پسندی بھی تھی اور زیادہ وہ جسے کہتے ہیں نا سیلری میں بڑی برکت تھی. نمبر دو جو ہم بات کرتے ہیں نا ان بیوروکریٹس کی, کہ ٹھیک ہے ہمارا سافٹ ویئر, میں یہ کہتا ہوں اگر آپ ان کی پروفائلز دیکھیں, میگل ہارورڈ آتے میڈیوکر ہیں لیکن جب تک یہ اپنی ایس ایم سیز تک جاتے ہیں دے آر آل فورن گریجویٹس, گورننس کے اندر ڈگریاں کی ہوتی ہیں سارے کو, لیکن کچھ کر نہیں پاتے. سسٹم یہ نہیں ہے کہ ان کو 2 مہینے بعد لے کے وہ ان کی ٹرانسفر ہو جائے گی, اگر آپ وہ والی پرماننس بھی لے آتے ہیں لیکن آپ کا جو ایکو سسٹم ہے وہ آپ کو کام نہیں
کرتا ہے یہاں پہ. جی
ٹھیک ہے, ایک آپ نے جو بات کی which I wanted to address was the incentive. دیکھیں جب مجھے جاب ملتی ہے نا تو مجھے پہلے ہی کہتے ہیں کہ جی آپ کو مبلغ 35,000 روپیہ ملے گا اور آپ نے 4 کلاسز پڑھانی ہیں اور آپ نے یہ کرنا ہے. بھائی جب مجھے پہلے ایک کانٹریکٹ میں بتا دیا گیا تھا کہ میں اتنی نا واٹ کائنڈ آف انسینٹیو آئی ایم سیکنگ, ٹھیک ہے, اب وہ اگر نہیں پڑھا رہا اس کا مطلب ہے دیٹ از دا گورننس ایشو, دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, کہ اس کو کیوں تنخواہ مل رہی ہے, اس کی تنخواہ کاٹنی چاہیے,
بریچ آف کانٹریکٹ,
اٹ از دا بریچ آف کانٹریکٹ. اب وہ لی تھا, میں نے امریکہ میں ایسا نہیں انسینٹیو دیکھا کہ ایک پروفیسر پڑھاتا ہے دوسرا نہیں پڑھاتا تو تنخواہ نہیں ملتی, دونوں کو مل رہی ہوتی ہے لیکن دین ہی از اکاؤنٹیبل اور اس کو جناب لیٹر ملتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے. I am not happy with my job, ٹھیک ہے مارکیٹ بہیویئر کے جی اگر آئی ایم ناٹ ہیپی مجھے نکال دیا جائے, میں کسی اور جگہ نوکری کر لوں گا, میں نکلتا بھی نہیں ہوں, میں وہاں پہ روتا بھی رہتا ہوں اور میں سسٹم کو پلیوٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, اٹس مور آف این ایڈمنسٹریٹو ایشو رادر دین میں کہوں کہ جی کیونکہ مجھے انسینٹیو نہیں دیٹس وائی میں کام نہیں کر رہا. انسینٹیوز اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن انسینٹیو سم ٹائم برے بھی ہوتے ہیں, جس طرح ایک چیز ہوتی ہے نا جیوان پیراڈاکس, یعنی آپ نے یہ کہا کہ میں فیول ایفیشنٹ کارز لے کے آتا ہوں پاکستان کے اندر, اب اگر آپ فیول ایفیشنٹ کارز لے کے آئے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ اب ٹریول کم کریں گے آپ آرام سے ایک جگہ سے, سو واٹ ہیپنز از کہ لوگ زیادہ گاڑیاں استعمال کرنے لگ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ہمارے یہاں پہ اب اگر آپ سرکار کی نوکری اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ میں نے پاکستان, میں محب وطن ہوں, میں پاکستان کو سرو کرنا, میں صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ آئی نیڈ پاور اینڈ آئی نیڈ پرماننس. مارکیٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے لوگ, ابھی آپ نے جس طرح عرض کیا کہ ڈاکٹرز انجینئرز یہ بھی اپنی اتنا یو ای ٹیز اور میڈیکل کالجز میں 5-5 سال ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں پھر بھی آ جاتے ہیں سول سروس میں, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کہ دے آر دے ڈونٹ فائنڈ انجینئرنگ کی جابس نہیں ہیں, میڈیکل کی جابس نہیں ہیں, دا پرابلم از کہ ان کو وہ پاور چاہیے. اور پاکستان کے اندر وہ جو ہم نے اسٹرکچر ایک بنا دیا ہوا ہے نا کہ جی اف یو ہیو پاور یو کین کریٹ دا منی, دا پرابلم از کہ ہم نے یہاں پہ اس کو وہ ریوارڈ ہی نہیں کرتے, یعنی مجھے میری ایجوکیشن پہ اب ریوارڈ نہیں مل رہا. اگر آپ پاکستان کے پوسٹ کووڈ ٹائم کو دیکھیں سو دا ریٹرن آن ایجوکیشن از نیگلیجبل, اسی لیے آپ کی ایجوکیشن کمپرومائز ہو گئی ہوئی ہے, دا ریٹرن آن جابز از نیگلیجبل, دیٹس وائی آئی ایم ہیپی کہ میں ٹک ٹاک پہ کر لیتا ہوں کام, میں وہ ڈیجیٹل میڈیا کو مونیٹائز کر لیتا ہوں اینڈ آئی کین ہیو این آڈی, اور آپ اور میں پی ایچ ڈی کر کے بھی اپنی ابھی آلٹوز میں پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو وہ جو ریٹرن آن ایجوکیشن تھا وہ آپ کا ختم ہو گیا. شروع میں ہوتا تھا کہ پی ایچ ڈی والے کو ویسے ہی لوگ دیکھنے آتے تھے کہ بابا جی نے کب کی ہے, اب آج کل اتنے پی ایچ ڈیز ہو گئے ہیں کہ ہماری وہ ویلیو ہی ختم ہو گئی, سپلائی آپ نے زیادہ کر دی. سو کمپٹیشن آپ کریں, لیکن وہیں پہ میں وہ جو بات کرتا ہوں نا کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے,
انسٹیٹیوشنل گورننس,
انسٹیٹیوشنل گورننس ہے. اور یہ آپ چاہے پولیٹیکل ریلم میں دیکھ لیں, پولیٹیشنز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, چاہے آپ اکیڈیمکس میں لے آئیں اکیڈیمکس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں کیوں ایک ٹیکسٹ کر کے کہہ دیتا ہوں کہ یار آج دل نہیں چاہ رہا, آج کلاس نہیں میں نے پڑھانی, آئی شوڈ بی اکاؤنٹیبل. اب ایک بچہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر آیا پڑھنے کے لیے اور میں جناب ڈیلی ٹیکسٹ کر رہی ہوں کہ مجھے تنخواہ تو مل رہی ہے لیکن اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کہ اگر پرائیویٹائز ہو جائے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا, اٹ از بیسیکلی کہ آئی نیڈ ٹو ہیو سیٹ آف رولس اور اگر میں اس کی وائلیشن کرتا ہوں آئی نیڈ ٹو بی پینلائزڈ. اگر آپ سمپلی یہ ایک چیز کر دیں, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے چاہے وہ ایس او ای ہے, دیر ول بی ایفیشنسی انٹو اٹ. चाहे आपका कंपटीशन नहीं भी है, लेकिन वट एवर आई एम आस्किंग यू टू डू एंड यू आर डूइंग इट इन टाइम, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब आपको पता है कि आप कुछ ना करके भी यू विल गेट अवे विद दैट, देन वी से कि यार लेट्स गो फॉर द मार्केट सॉल्यूशन, देखते हैं कि जी मार्केट के अंदर। लास्टली कि क्या प्राइवेट सेक्टर के अंदर करप्शन नहीं होती, शायद पब्लिक से ज्यादा होती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग अपने कामों में वो दो नंबरी नहीं करते, बिल्कुल
करते हैं। वो तो पास
हमारे पास जिंदा मसाल है ताज कंपनी की, कुरान हकीम प्रिंट करती थी और सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैंडल उसका, वो भी तो प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। ये कोई लिखा हुआ असूल नहीं। मैं आई डिफर फ्रॉम माय फेलो इकोनॉमिस्ट व्हेन दे से कि नहीं मार्केट हैज द सॉल्यूशन। आई थिंक गवर्नमेंट आल्सो हैज द सॉल्यूशन, बट यू नीड अ सेट ऑफ रूल्स, यू नीड टू
जहां भी वो लूप होल्स होंगे उनको
आप उनको वहीं पे, जब भी गवर्नमेंट स्टेट फेलियर होगा तभी आपका मार्केट को स्पेस मिलती है। आपका स्टेट फेलियर नहीं होगा, मार्केट को स्पेस नहीं मिलेगी।
अच्छा,
अगर स्टेट आपकी it should, I'm not talking about the size of the state, I'm talking about that it needs to be a well functioning state. A well functioning state is ki aap university jate hain, aap fees apni jama karwate hain, aapki classes hoti hain, aapko job mil jati hai, now that is a well functioning state. Aap hospital jate hain, aapka ilaaj ho jata hai, fir mujhe private hospital jane ki zarurat nahi hai. जब स्टेट का फेलियर होता है दैट इट इज नॉट गिविंग मी, जब आपको आपके बेटे को अच्छी तालीम नहीं मिली पंजाब यूनिवर्सिटी, अब आपने कहा नहीं मैंने एक्स वाई जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है, जब मुझे एक अच्छे हॉस्पिटल में नहीं मिला, जब मैंने यहाँ पे एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज से स्टील लिया और वो जैसे ही लगाया तो ना अब सारी बिल्डिंग गिर गई, तो मैंने कहा यार इससे बेहतर आई बेटर यूज दैट वन। गाड़ियों की प्रोडक्शन देख लें, हम आज तक वो हमारी जो स्टार कार है वो जिंदाबाद वो ऑल्टो या वो वाली है, लेकिन उस वो आपने भी वही देखी, मैंने भी वही देखी, इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी वही देखे, कोई इनोवेशन
नहीं है, बिल्कुल भी
नो एयर बैग्स नथिंग, बट वी आर गोइंग इट, क्योंकि आपने उसको चॉइस ही नहीं दी, आपने कभी उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं ठहरा। आपके जितने यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कभी हमने कहा है इन ऑटोमोबाइल कंपनीज को कभी, यस यू आर डूइंग द रेंट सीकिंग, आप इतने ज्यादा मराहत ले रहे हो, इतनी ज्यादा सब्सिडी ले रहे हो, बट व्हाट अबाउट द लाइव्स दैट आर इन
डेंजर। सो
The state needs to be well functioned. वहां भी उसकी accountability होनी चाहिए। अगर वो accountability है, अगर वो well functioning है, जिस तरह आप सोचते हैं कि जी एक private company भी इस तरह चलती है, तो I don't think so कि we need to go for such alternatives.
जी जी। अच्छा, जो आपने contract वाली बात की ना कि contract अगर है, जैसे कोई teacher है, लेक्चरर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो यकीनन उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन पूरी करनी है सारी। अच्छा, बिल्कुल यही बात मैं भी कहता हूँ, मतलब ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, ठीक है ना, इतनी सैलरी ये वो सारा कुछ, और उन्हें वो करना चाहिए, उन्हें और क्या इंसेंटिव चाहिए, ये बिल्कुल गवर्नमेंट में मैं बिल्कुल ये समझता हूँ इंसेंटिव, लेकिन इसमें एक चीज़ हो सकती है, आपने एक बड़ी अहम चीज़ उसमें पॉइंट आउट की, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं और रिवार्ड एंड पनिशमेंट नहीं है उसके साथ जो जुड़ी हुई है। अगर फर्ज करें कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी पूरा कर रहा है, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट सही तरह पूरा कर रहा है तो उसके लिए क्या इंसेंटिव हो सकते हैं, उसके लिए क्या रिवार्ड हो सकते हैं, और अगर एक नहीं कर रहा है, एक अपनी क्लास नहीं पढ़ा रहा है, एक ब्यूरोक्रेट जो है अपना काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट हो सकती। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो अकाउंटेबिलिटी, ठीक है बिल्कुल, लेकिन एक ये सूरत होनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी को जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इनबिल्ट कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट में आ जानी चाहिए।
बिल्कुल।
अच्छा देखिए ना, हमारे यहाँ इन्होंने एक तो ये कि काम सही करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, आपने देखा होगा कि लेक्चरर्स भर्ती किए गए हैं, अच्छा जी एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर, जी एक्सटेंड किया जाएगा बाद में, भाई एक तो आप उनकी सैलरी को मुनासिब रखें, कॉन्ट्रैक्ट में लिखें सारी चीज़ें पूरी, एक प्रोबेशन पीरियड रखें उनका और उसमें लिखें ये किया जाएगा ये किया जाएगा, लेकिन फिर वही कॉलेजेस में भी यूनिवर्सिटीज़ में भी आपने देखा होगा एसीआर लिखे जाते हैं सबकी एक जैसी एसीआर, अगर कोई ख़राब लिख दे उसके ख़िलाफ़ काम शुरू हो जाता है, उसके ख़िलाफ़ एजिटेशन शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा जो यूनियंस बनी हुई हैं टीचर्स की प्रोफेसर्स की अपनी, वो शुरू हो जाती, एक फिर वही वो एकोसिस्टम या पोलिटिको इकनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट जो हमने बना दी हुई है, पोलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाती है, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस उसमें आ जाती है, और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो यकीनन ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो हैं इनको रिवाइज करके एक अकाउंटेबिलिटी उनमें रखी जा सकती है, और उसके साथ एक तरह से अकाउंटेबिलिटी बाहर भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस के रेफरेंसेस में भी हो सकती है।
बिल्कुल, देखिए उसके अंदर ये है कि اے سی آر ہے نا, ابھی آپ نے کہا کہ جی اے سی آر اگر آپ کی بھی یونیورسٹی کے اندر وہ ویری گڈ ایکسلنٹ ویری گڈ ایکسلنٹ, ہم نے ایوریج تو کبھی دی
جی بالکل ایسا ہی ہے,
بٹ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اف آئی ایم ناٹ ورکنگ مجھے آرام سے وہ نکال دیتے ہیں اور آئی ایم ریڈی ٹو ڈو دیٹ.
جی
اگر آپ یہی چیز گورنمنٹ کے اندر لے کے آئیں کہ جی اف آئی ایم ناٹ ورکنگ تو میری تین اے سی آرز خراب ہوتی ہیں, آئی ول بی آؤٹ آف دا گورنمنٹ جاب, آپ کو کبھی مثال نہیں ملے گی کہ جی پیپل ہیو ڈن دیٹ. سمپلی اٹس ناٹ کہ جی ہمارے پاس رولز نہیں ہیں, ٹھیک ہے ہمارے پاس بالکل ہی پرفارمنس کے رولز ہیں, ابھی جو ارشد حسین نے وہ لے کے آیا سول سروس ریفارمز وغیرہ جو لے کے آیا کوئی نہیں امپلیمنٹ ہوئے, ہر حکومت میں ان کو لایا جاتا ہے کہ ہم یہ کریں گے, وہ بےچارے وہی لکھتے ہیں پھر ان کو ہم نکال دیتے ہیں پھر لے آتے ہیں پھر نکال دیتے ہیں, لیکن وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. سو دیر از این امپلیمنٹیشن فیلیئر ہمارے یہاں پہ, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ کہ ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے, ہمارے پاس یہاں پہ امپلیمنٹیشن فیلیئر ہے. اور اگر آپ اس امپلیمنٹیشن فیلیئر کو رسپونڈ کریں کہ جی ٹھیک ہے ایک دفعہ یونین آئے گی دو دفعہ آئے گی تیس دفعہ آئے گی چوتھی دفعہ اٹس ڈن, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ہمارے جو موٹیوز ہوتے ہیں بڑے پولیٹیکل ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے ایک کو نہیں میں نے مختلف اسٹیک ہولڈرز کو ڈفرینٹ طریقے سے خوش کر رہا ہوتا ہوں, تو اس کے اندر دین دی گورنمنٹ ہیز ٹو بیئر دی برنٹ, دی گورنمنٹ ہیز ٹو بیئر دس پین کہ بھی دی گورنمنٹ از انیفیشنٹ. اگر آپ باہر کی گورنمنٹس دیکھیں یہ نہیں میں کہتا کہ بڑی وہ دودھ کی دھلی, وہاں پہ بھی کرپشن ہوتی ہے, ایون کنٹری لائک یو ایس یو کے وہاں پہ بھی کرپشن ہے, چائنا میں بھی کرپشن ہے, لیکن ان کے انسٹیٹیوشنز چل رہے ہیں, دے ڈو وہ جیسے کہتے ہیں پینلائز دیم, کوئی ویزیبلٹی ہے ہمارے یہاں پہ. اب یو مے اگری ود می کہ ود دس میڈیا ہائپ کہ جی ہر کسی کے پاس موبائل ہے ٹویٹر ہے یہ فورمز ہیں, لوگ اب زیادہ نیب سے نہیں ڈرتے, لوگ اس کیمرے سے زیادہ ڈرتے ہیں, اینڈ وانس یو پٹ دیٹ تھنگ, سو وہ جو ایک عمل اسٹارٹ ہوا ہے, بٹ ایز اے سیڈ that this is not a proper, یہ نہیں کہ جی ویڈیو بنائی کسی کی اور آپ نے ڈال دی اور آپ اس کو ہراس کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں پروز اینڈ کونس ہیں. آپ کے انسٹیٹیوشن کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ اگر میرا یہ سرکاری یونٹ نہیں چل رہا, اگر ایک ہاسپٹل نہیں سروس ڈلیوری دے رہا, تو اس کے کیوں نہیں ہم اس کے جو ایم ایس ہے اس کو نکال دیتے اینڈ یو بار ہم فرام دا جاب. لیکن ہم جب تک یہ والی ایکشنز نہیں لیں گے, جب تک ہم ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے, تب آپ کو وہی پلان بی کی طرف جانا پڑتا ہے کہ لیٹس پرائیوٹائز اٹ.
دیکھیں نا وہ ایڈ ہاکزم جو ہے گورنمنٹ میں, مطلب ایک طرح سے مجھے لگتا ہے ساری گورنمنٹ ہی ایڈ ہاکزم پہ چل رہی ہے, پالیسی تو کوئی ہوتی نہیں.
بالکل.
اچھا اب وہ اس میں جب ایڈ ہاکزم پہ چل رہی ہے تو کوئی لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں ہے اور لوگوں کو اپیز کیا جاتا ہے, اپیزمنٹ کی پالیسی ایک بنی ہوئی ہے, اچھا اس نے یہاں پہ جلوس نکلا ہے انہوں نے یہ کر دیا اپیزمنٹ کرو اور ختم, چلو جی ٹھیک ہے بس
ماپ اپروچ نا کہ ٹائم گزارو بس
ٹالتے جاؤ نا, بس ٹالتے جاؤ چیزوں کو. اچھا وہ ٹالتے ٹالتے 75-76 سال ہو گئے ہیں اور چیزیں ایک ایسے نقطے پہ آ گئی ہیں جہاں پہ آپ کسی چیز کو بھی چھیڑتے ہیں تو وہ بھڑک جاتی ہے, چنگاری ایک دم
میں ہو گیا تھا. چنگاری اس لیے ہے کیونکہ ہم زیادہ اویئر ہو گئے ہیں.
ہاں جی
80s والا جو اسٹوڈنٹ تھا اور جو 2024 کا اسٹوڈنٹ ہے, ہمیں فرق یہ ہے کہ وہ کہہ سکتا کہ نہیں سر آپ ٹھیک نہیں ہیں. 80s والے کو دبکا لگا دیتے وہ چپ ہو جاتا تھا, تو چیزیں اس وقت بھی تھیں آج بھی چیزیں ویسی ہیں, لیکن آج آئے تھے کہ ہماری اویئرنیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے.
بالکل زیادہ
وی رسپونڈ.
ہاں جی صحیح. ہاں جی اچھا تو وہ جو ہے اپیز کر کر کے ہم نے ایک ایسے نقطے پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہم اب سمجھتے ہیں, پتہ ہے دیکھیں گورنمنٹ میں بھی بیٹھے لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے,
بالکل
پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, ان کو بھی پتہ ہے. جیسے میں نے کہا بھی پیپلز پارٹی ہے جو جنہوں نے نیشنلائزیشن کی, وہ بھی پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کرتے. اچھا انہیں پتہ ہے کیا ہوگا. اچھا یہ پاپولسٹ پالیٹکس ہے جبکہ ایک لانگ ٹرم پالیٹکس ہونی چاہیے, لانگ ٹرم تھنکنگ کے ساتھ آپ آئیں اور دیکھیں کہ بھائی پرائیویٹائزیشن جو آپ نے کرنی ہے کیوں کرنی ہے. یہ پرائیویٹائز دیکھیں نا, پرائیویٹائزیشن ہوگی تو گورنمنٹ کا امیج چینج ہونا شروع ہوگا, گورنمنٹ کا انیفیشنٹ ہونے کا ہے اور اس میں ریڈ ٹیپزم کا جو ہے اور جو ڈلیوری نہ ہونے کا ہے یہ کرپشن کا ہے اور اس طرح کی جتنی چیزیں دیکھیں نا لوگ. مجھے یاد ہے اب ویسے تو پرانا امیج پرانا ہے جو بہت زیادہ اب گاڑھا ہو گیا ہے, پہلے بھی لوگ سرکاری نوکری میں اس لیے جانا چاہتے تھے, انہیں پتا تھا ایک دفعہ نوکر ہو گئے تو بس ساری عمر لنگ گئی ہے پھر.
Exactly.
تو وہ
آج بھی ایسے ہی.
ہاں اب بھی ایسے ہی ہے بلکہ اب تو بہت زیادہ ہو
گیا.
اچھا دیکھیں نا اس میں لیکن یقیناً اس کے ساتھ ایک ہوا کہ پہلے لوگوں کی مطلب آبادی بھی کم تھی, ایجوکیشن بھی کم تھی, सरकार का जो हजम है वो भी कम था,
अब ज्यादा,
अब बहुत ज्यादा हो गया, आबादी भी ज्यादा, एजुकेशन भी ज्यादा हो गई, सरकार का हजम भी ज्यादा हो गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ा है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, और उससे यकीनन एक तरह से कुछ खुशहाली भी आई है लोगों में, ठीक है ना। अच्छा, एक क्लास ऐसी पूरी बन गई है, एक खासी तादाद है जो अब गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाना चाहती, उन्हें पता है हम इधर ज़्यादा कमा सकते हैं। बल्कि मुझे याद है हमारी जो एक एसोसिएशन बनी थी लेक्चरर्स प्रोफेसर की, वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जुलूस निकाला करते थे। मैं उन्हें कहता था यार जे तुसी प्राइवेट सेक्टर जो हो, जितनी तनख्वाह इतने मिलती ना, इन पैसे कभी नहीं मिलेंगे तुम्हें, जो क्वालिटी होती थी तरह से ना। तो बहरहाल ये एक हमें देखना होगा कि गवर्नमेंट को एक शॉक ट्रीटमेंट ज़रूर देना है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है जो इस तरह की चीज़ें करना चाहती है, प्राइवेटाइजेशन तेज़ी के साथ बिल्कुल यकीन खामियां होंगी, कभी भी ये नहीं हो सकता कि परफेक्ट प्राइवेटाइजेशन हो, उसमें खामियां होंगी, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा, लेकिन यकीन प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए उन्हें, उन्हें गवर्नमेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें जो उसको चेंज करना चाहिए, और एक शॉक ट्रीटमेंट यकीनन ड्यू है, सबके लिए ड्यू है। जो प्रोटेक्टेड सेक्टर्स हैं प्राइवेट में हैं, लेकिन उनका भी और जो बाकी हैं उनको भी एक शॉक ट्रीटमेंट के साथ एक नई गवर्नमेंट बन सकती है, नए एक सम की तरफ हालात जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आर्यन साहब, आज आपने हमारे साथ एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई आपसे। हम यकीनन आइंदा भी कुछ और मौजूदात पे, कुछ और इश्यूज़ पे भी आपसे बात करने के लिए आपको दावत देंगे। शुक्रिया। और ये हमारी पॉडकास्ट आज की जो है प्राइवेटाइजेशन के बारे में अनिल सलमान साहब के साथ जो हमने की गुफ्तगू की थी, तो हम उसे यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आइंदा फिर हम एक और किसी और मेहमान के साथ इसी प्राइवेटाइजेशन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।